Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Ajaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Vanya Deva Jaya Subhadra. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu Me. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jaya Goranitaya, 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 Goranitaya. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Goro Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bhuvan Hari Naam Sankirtan Ki, Shri Shri Radha Giridhari Bhagavan Ki, Shri Shri Jagannath Dev Subhadra Maya Ki, Shri Shri Gaur Nitaya Ki, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरहे नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरा भवते नयस्थके। श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है 11 और 12। तो पहले 12वां श्लोक के बोलते हैं, बाद में 11वां श्लोक का उच्चारण करेंगे। कुमुदा चंडिका कृष्णा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवे कन्यकेति च माधवे कन्यकेति च माया नारायणी सानी माया नारायणी सानी शारदे च अम्बिकेति च शारदेत्यम्बिकेति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवे कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्यम्बिकेति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवे कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्यम्बिकेति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्यम्बिकेति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्यम्बिकेति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्यम्बिकेति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्यम्बिकेति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी चानी सारदेत्यं विकेतिच कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेतिच नारायणी चानी सारदेत्यं विकेतिच। तो 11 श्लोक इस प्रकार है। नामध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरापि दुर्गति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। इसका अनुवाद और अन्वय साथ में लिखे हैं प्रभुपाद जी ने। तो इसके जो अन्वय है हम बोलते हैं, नामध्येयानि विभिन्नाम कुर्वन्ती देंगे स्थानानि विभिन्न स्थानों में च भी नराह भौतिक भोग में रुचि रखने वाले लोग भूवि पृथ्वी पर दुर्गा इति दुर्गा नाम भद्रकालीति भद्रकाली नाम विजया विजया नाम वैष्णव इति वैष्णवी नाम च भी कुमुदा कुमुदा चंडिका चंडिका कृष्णा कृष्णा माधवी माधवी कन्याकेती कन्या का या कन्याकुमारी च भी माया माया नारायणी नारायणी ईशानी ईशानी शारदा शारदा इति इस प्रकार अंबिका अंबिका इति भी च तथा। अनुवाद और तात्पर्य इस्कॉन के आचार्य अभय चरण अरविंद भक्ति विद्यान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस प्रकार है। अनुवाद, भगवान कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यका माया नारायणी ईशानी शारदा तथा अंबिका। तात्पर्य, चूंकि कृष्ण तथा उनकी शक्ति साथ साथ प्रकट हुई, अतः लोगों ने सामान्यतः दो समूह बना रखे, शाक्त तथा वैष्णव, और कभी कभी दोनों में स्पर्धा चलती है। अनिवार्य रूप से जो लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं वे शाक्त है, और जो आध्यात्मिक मोक्ष तथा आध्यात्मिक धाम प्राप्त करने में रुचि रखते हैं वे वैष्णव है। क्योंकि लोग सामान्यतः भौतिक भोग में रुचि रखते हैं, अतएव वे भगवान की शक्ति माया देवी की पूजा करते हैं, किंतु वैष्णव जन शुद्ध शाक्त तथा शुद्ध भक्त होते हैं। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की शक्ति हरा की पूजा को सूचित करता है। हर वैष्णव भगवान की शक्ति के प्रार्थना करता है कि वह ऐसा अवसर प्रदान करे जिससे वह भगवान की सेवा उनकी आध्यात्मिक शक्ति समेत कर सके। इसीलिए सभी वैष्णव जन राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण तथा रुक्ष्मणी द्वारका जिस जैसे अर्थ विग्रह की पूजा करते हैं, किंतु दुर्गा शक्ति दुर्गा शाक्त लोग भौतिक शक्ति की पूजा विविध नामों से करते हैं। माया देवी जिन जिन नामों से विभिन्न स्थानों में जानी जाती है उनकी सूची वल्लभाचार्य ने दी है। वे वाराणसी में दुर्गा, अवंती में भद्रकाली, उड़ीसा में विजया और कोल्हापुर में वैष्णवी या लक्ष्मी कही जाती है। महालक्ष्मी तथा अंबिका की प्रतिनिधि बंबई में है। वे कामरूप प्रदेश में चंडिका, उत्तर भारत में शारदा तथा कुमारी अंतरिक्ष में कन्या कहलाती है। इस तरह वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से अनुसार पाई जाती है। शिल विजय ध्वज तीर्थपाद ने पद रत्नावली टीका में विभिन्न नामों की व्याख्या की है। माया को दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। उन्हें शुभ होने से भद्रा और गहरे नीले रंग की होने के से काली कहा जाता है। अत्यंत शक्तिशाली होने से विजया और विष्णु की विभिन्न शक्तियों में से एक होने के कारण वे वैष्णवी कहलाती है। भौतिक जगत का भोग करने तथा भोग की सुविधाएं प्रदान करने के कारण कुमुदा शत्रुओं असुरों के प्रति कठोर होने के कारण चंडिका और समस्त भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के कारण वे कृष्णा कहलाती है। इस तरह भौतिक शक्ति के विविध नामों है और वे पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में स्थित है। ओम यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिसं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री श्री राधा गिरधारी श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया और श्री श्री गौनीताय के श्री शरण कमल में बैठकर हम रोज भगवान के जो लीला का गुणगान यहाँ पर करते हैं। तो भागवत का नित्यम भागवत सेवया का यहाँ हरोज क्रम अनुसार दशम स्कंद के दूसरा अध्याय के 11 और 12 श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान की जो लीला है वो अद्भुत है। जो भगवान के शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज गंगा के तट पर बिठे हैं और सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किए हैं कुछ। हे ब्राह्मण, आप मुझे सूर्य वंश की कथा सुनाई, अभी मुझे सोम वंश की जो पावन पवित्र जो कथा है, जो हमारे पितामह के साथ जो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने जो लीला किया है को हमको सुनाइए। वास्तव में भगवान की जो कथा है वो हमारे लिए एक औषधि है, दवाई है, क्योंकि हम सब रोगी है, भव सागर में पड़े हुए हैं। जो कि वो चौथा नंबर के श्लोक में पहले अध्याय जो दसवें स्कंद में कहते हैं बहु औषधि तौस्तभिमराभिराम। तो जो संसार में जो दुखी जो कष्ट भोग रहे है भव सागर में मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में जो पड़े हैं पुनर्ति जननम पुनर्ति मरणम, तो भगवान की जो जो कथा है हमारे लिए बहुत उपाध्याय है, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से जो भव सागर है वो हम पार कर सकते हैं। इसलिए तो नैमिष साणी में भी जो कथा हो रही थी तो इसमें सोनक इत्यादि सब ऋषियों ने प्रश्न किए है, इसमें प्रश्न किया है कि हे प्रभु हम कथा सुनने के लालाहित है, आप हमको भगवान श्री कृष्ण की जो मधुर मधुर कथा है हमको बताइए। ऐसा सुनमाणायम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पते पुंस शोक मोह व्यापहा, कह रहे हैं कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवान इस परम भगवान के बारे में सुनने से हृदय में भक्ति होती है, और इतना ही नहीं शोक मोह व्यापहा जो हमारा शोक है दुख है और भय है और भय से हम दूर हो जाते हैं, ऐसी एक कथा है। और भागवत के महात्म में भी स्कंद पुराण में पद्म पुराण भी भागवत का महात्म लिखे है, तो भगवान की कथा सुनने से भगवान भी लालाहित है। कहते नित्यम भागवत का जो श्रवण करते हैं तो नित्य भगवान की कथा सुनने से हमारा हृदय पवित्र हो जाते हैं। जैसे आपने सुने होंगे भगवान की कथा जहां भी चलती हो यहाँ भक्त हनुमान जी यहाँ पर आ जाते हैं, हमको दिखते नहीं है हमारी भौतिक जो आंख शर्म है लेकिन आ जाते हैं। इसी तरह भगवान भी कहते हैं जहां पर मेरी लीला होती है मेरा गुणगान यशगान होता है यहां पर मैं स्वयं आके सुनता हूं। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं यत्र यत्र सतुरुक्त श्रीमद भागवतम लभे, यत्र यत्र जहां जहां श्रीमद भागवत कथा होती है यहां पर भगवान कहते मैं स्वयं आता हूं। कैसे आता हूं तो कहते हैं गच्छामि तत्र तत्र हम गो यथा सुतवस्थलः, जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा घर पर रहते हैं और गाय जब बाहर चरने के लिए कुछ जाते हैं खाना घास मेरा इतना स्पष्ट हिंदी नहीं है क्योंकि अभ्यास ही नहीं है हिंदी बोलने का, क्योंकि हर रोज गुजराती में बोलना होता है तो थोड़ा तकलीफ तो होता है लेकिन आप सब समझ जाएंगे यहाँ पर कई गुजराती भी है बस। तो जब वो घास चराने के लिए जब गवार इसको लेके जाते हैं तब कहते हैं जब संध्या होती है तब गाय इसके बच्चे का चिंतन करती है, पूरा दिन चिंतन करती है बछड़े का, लेकिन जब संध्या गो धूली हो जाती है तब गाय दौड़कर आती है तुरंत, जो यहाँ जिसका बछड़ा बंधा होता है यहाँ पर जाती है दौड़कर। इसी तरह भगवान भी कहते हैं जहां पर भागवत होता है मेरा गुणगान जहां पर गाते हैं यहां पर मैं दौड़ के आता हूं। स्वयं जगन्नाथ जी का तो आपको पता है जहां पर द्वारका में रोहिणी माता कथा कह रही थी सब भगवान की जो पत्नी है, तो यहां पर स्वयं कृष्ण बलराम आए और सुने और भाव में आ गए तो रूप बन गए। तो दसवें स्कंद में बहुत अद्भुत लीला है भगवान की जो अत्र सर्ग विसर्ग जो दूसरा स्कंद में बताते हैं, इसमें निरोध अर्थात जो लीला है वो पूरी लीला का वर्णन दसवें स्कंद में हुआ है। तो यहाँ पर क्रम अनुसार हम 11 और 12 श्लोक के आज कुछ चर्चा करेंगे। तो आपने कथा सुनी जब वसुदेव ने कहे कंस मैं आपको वचन देता हूं जो मेरा पुत्र जन्म लेंगे मैं आपको दे दूंगा, तो कंस ने जो इसकी बहन देवकी को केस पकड़ लिया था रथ पर, वो छोड़ दिया और कहे ठीक है, क्योंकि वसुदेव पर पूरा विश्वास था, क्योंकि वसुदेव एक महान भक्त है भगवान के। देखो असुर है, असुर किसी का किसी भी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वसुदेव इतना शुद्ध है, कंस ने भी विश्वास कर लिया। ठीक है, वसुदेव एक बार बोला तो ठीक है, जैसे पक्का ठीक है, वसुदेव बोल दिया तो मान लिया। तो बाद में बात आती है यहां पर के छह पुत्र को कंस ने मार दिए और सातवा पुत्र की सरसा यहां पर दूसरा अध्याय में हो रही है। तो छह पुत्र मर गए, बाद में कोलाहला मच गया कि कंस ने देव के छह पुत्र मार दिए हैं। जय गोस्वामी ने बहुत सुंदर टीका लिखी इस श्लोक पर, जो छह पुत्र है कौन है, वो तो कालनैनी के जो पुत्र है वो तो है, लेकिन हमारे इधर भी छह पुत्र है, चाहे गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सबके दिन में छह पुत्र लिखे है, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्षा मत्सर्य। वो जब मर जाएंगे तब हमारे हृदय में भगवान आएंगे, जैसे देवकी के गर्भ में छह पुत्र मर गए बाद में भगवान आए, इसी तरह हमारे हृदय में भी जो छह पुत्र है काम क्रोध लोभ वो सब मिट जाएंगे चला जाएंगे, तब भगवान वज्रहंडी नंदन भगवान हमारे हृदय में विराजमान होंगे। तो छह पुत्र का वध हो गए, कंस ने कर दिए। बाद में बहुत भय थे, क्योंकि यहां पर भगवान विचार करते हैं, भगवान गोलोक में विचार करते हैं कि अभी जो यदुवंश है वो बहुत भयभीत है, और अभी मेरा जो अंश है संकर्षण और देवी के कुख में आ गए हैं, इसलिए अभी योग माया को बुलाए है भगवान ने, योग माया को बुलाए और कहे कि आप हे कल्याणी हे देवी, आप जहां पर नंद बाबा रहते हैं गोकुल में, जहां पर गोप रहते हैं गौ रहते हैं गाय रहती है, जहां पर गोपी रहती है गोप की जो पत्नी रहती है, यहां पर आप जाइए, यहां पर जाइए और यहां पर नंद बाबा के घर पर वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी यहां पर रहती है। कंस के भय से अलग अलग जगह पर वसुदेव की पत्नी रहती थी। तो यहां पर भी नंद बाबा के घर पर रोहिणी माता रहती थी, जो वसुदेव की जो पत्नी है बड़ी पत्नी है। तो यहां पर योग माया को भगवान कहते हैं आप जाइए, और यहां पर जो देवकी के गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं वो शिशु को आप क्या कीजिए, जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर कीजिए। तो योग माया तो भगवान की सेवा करती है ना, जैसे आध्यात्मिक जगत में योग माया भगवान की सेवा करती है, वो योग माया इस भौतिक संसार में उल्टा हो जाती है और जीवों को कष्ट देती है। श्रीगुणात जो है आदि देविक आदि भौतिक आदि जो तीनों जो संसार के जीव को दुख देती है, तो योग माया भगवान के आज्ञा अनुसार वो कार्य करने वाले है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं, बहुत सुंदर आशीर्वाद दिए हैं। कल्याणी कहते हैं हे भद्रे हे कल्याणी, आप मेरा काम करेंगे तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, संसार में भौतिक संसार में आपकी बहुत पूजा होएगी, बहुत लोग श्रद्धा से आपको मानेंगे, मेरी पूजा कम होएगी लेकिन आपकी पूजा ज्यादा होगी, और अभी हो रहे हैं आप देखिए सब जगह पर कहां कहां कौन सा देवी का मंदिर है, नाम भी नहीं आते, इतना माता जी है इतना देवी है। और फिर भगवान ने कहे ठीक है मैं आपको कुछ नाम देता हूं, तो थोड़ा कुछ नाम दिए, सब तो नाम नहीं दिए, सुखदेव गोस्वामी ने 10-15 नाम यहां पर वर्णन किए हैं, जो इस श्लोक में 11वें श्लोक में है और 12वें श्लोक में है। तो दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यका माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका जो नाम दिए हैं, तो इस नामों से जो भगवान की जो योग माया शक्ति है वो यहाँ संसार में भौतिक संसार में जो कार्य करती है, तो प्रभुपाद यहाँ पर परपोट में लिखते हैं जो सात इसको कहते प्रभुपाद जी कहते हैं जो कुछ मंगनी करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं कि हमको ये हो जाए, बंगला हो जाए, जमीन मिल जाए, गाड़ी हो जाए, ऐसा मांगते हैं भौतिक इच्छा, इसको भोग भोगने के लिए कुछ इच्छा करते हैं, इसको सात कहते हैं। और वैष्णव है, वैष्णव कुछ मांगते नहीं है, और कदाचित कभी देवी के पास चले गए तो भी क्या मांगते हैं वैष्णव? वैष्णव मांगते हैं कि हे देवी हमारे पर ऐसी कृपा कीजिए, हमारी मति कृष्ण में लगे, भगवान की सेवा में हमारी मति लगे, ऐसे वैष्णव मांगते हैं। लेकिन संसार के जो लोग हैं वो लोग क्या मांगते हैं? देवी के पास जाते हैं तो वो ये मांगते हैं हमारा परिवार में सुख शांति आ जाए, हमारा कुछ पुत्र हो जाए, पुत्र नहीं है तो ग्राम यदि, मैं अभी 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में गए थे, मुझे पता नहीं ग्राम यदि कौन है, पहली बार सब गांव में जा रहा था, सब जगह पर जा रहा था, तो ग्राम देवी को बिठाए थे, तो मैं पूछे भक्त को ये ग्राम देवी क्या है, तो बोलते हैं कि देवी है सब गांव की रक्षा करने वाली होती है, तो सब जगह पर ऐसे होते हैं, और सब जगह पर सबको मालूम है सब कुल देवी भी रखती है, रखते हैं। लेकिन वैष्णव होते हैं और वैष्णव ये सबसे परे है, वैष्णव डायरेक्ट क्या करते हैं भगवान के पास ही मांगते, जो भी चाहिए डायरेक्ट भगवान के पास मांगेंगे, देवी के पास नहीं मांगेंगे। हाँ देवी के पास मांगेंगे ठीक है, अभी मैं कहे भगवान की कुछ भक्ति दीजिए, लेकिन जो भोगने की इच्छा वो वैष्णव नहीं मांगते हैं। अरे यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव तो मोक्ष भी नहीं मांगते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते वो वैष्णव है, लेकिन वैष्णव इससे ऊपर जो वैष्णव हो जाते हैं वो मोक्ष मांगते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनी जन्मनी अहेतुकी भक्ति, भक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे बार बार जन्म मिले। तो ये मांगना चाहिए वो, लेकिन हमारी अल्प बुद्धि है, संसार के जो की मंदिर पर जाते हैं और कहते हैं हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। एक भक्त बता रहे थे मुझे, एक भक्त था वो देवी का भक्त थे, और देवी के पास गए और कहे हे देवी मेरे पर प्रसन्न हो जाओ, तो हर जो देवी के पास जाते थे कुछ फूल देते थे, कुछ नारियल कुछ देते धरते थे, तो एक दिन देवी प्रसन्न हो गई, बोलो मां क्या चाहिए, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूं, मैं एक नहीं 3 वसन देने के लिए तैयार हूं, मांगो। तब वो जो इसके देवी भक्त उपासक थे वो बोले हे देवी जो आप मेरे पर प्रसन्न है तो मुझे एक बड़ी गाड़ी दीजिए 1 वसन। बोले दूसरा मांगो, बोलते हैं दूसरा ऐसा वचन दीजिए कि सब लोग मेरे साथ अगल बगल में बैठना चाहिए और चलना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए। बोले अभी तीसरा ऐसा वचन दीजिए मेरे पास हमेशा के लिए पैसे की बैग रहे। देवी प्रसन्न हो गई, बोले ठीक है मैं प्रसन्न हूं, तुम कंडक्टर हो जाओ बस के। बस के कंडक्टर हो गई, बड़ी बस गाड़ी हो गया, बस मतलब बड़ी हो गई ना। बाने बोले अगल बगल में लोग रहना, तो बस में सब मुसाफिर ही रहते हैं आजू बाजू में, और पैसे की बैग भी रहती है ना, आपको पता है टिकट काटते हैं तो, लेकिन कुछ काम का नहीं, नहीं बस गाड़ी काम का, और नहीं जो परिवार जो है कुछ यस भी नहीं गाते हो तो थोड़ी देर बैठते हो बाद में निकल जाते उतर जाते हैं, और बैग होते पूरा दिन कमाते हैं और शाम को जमा करना पड़ता है। ऐसे उपासक होते हैं, मांगते नहीं, मांगने भी नहीं आते कैसा मांगना चाहिए। इसलिए कहते मांगना मांगना सब कहे, सब लोग कहे हमको दीजिए हमको दीजिए, मांगना न जाने कोई। मांगना कैसा मांगना चाहिए वो नहीं जानते। ऐसा मांगना चाहिए सब लोग करे याद। हमको ऐसा मांगना चाहिए कि सब लोग हमको याद करे, जैसे मीराबाई, मीराबाई ने भगवान के पास मांग लिए। कोई बोलते हैं मीराबाई ने ऐसा वर मांगा है कि प्रभु आप मेरे पति हो जाए। मीराबाई तो कहे ने अरे ऐसे वर को क्या मैं वर कर, वो आज जन्मते और कल मर जाते हैं, ऐसा नहीं मांगे। क्या मांगा इसने कि मेरा छुड़ी अमर हो जाए, वो हो गई। आप देखो आज मीराबाई का सब गुणगान गाते हैं क्योंकि भक्त है। जैसे नरसिंह मेहता तुकाराम जैसे भक्त आप सुनते हैं, ऐसे मांगे हैं जो लोग याद करते हैं इसको, अभी भी नहीं भूले। तो ऐसा मांगना चाहिए लोग याद करें कि भगवान के भक्त हो गए और भगवान के लिए ऐसे कुछ किए हैं कि भगवान बार बार इसको दर्शन देने के लिए बार बार इसका कार्य करने जा रहे, ऐसा मांगना चाहिए। लेकिन वैष्णव होते हैं, वैष्णव के लिए बहुत उपाध्यक शिक्षा है। देखो वैष्णव क्या मांगते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखा है। वैष्णव किसकी पूजा करते हैं और किसके पास मांगना चाहिए। आपको पता है भगवान चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे नवदीप में जब लीला करते थे, जब शिशु लीला पोगन लीला इत्यादि, तो गंगा पूजन करने के लिए सब जो नदिया की जो कन्या थी सब आती थी, तो पूजा भी करते थे गंगा गंगा की और शिव जी की इत्यादि दुर्गा की। तो यहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे किसका भजन करना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जो कन्या आती थी जो सामग्री सीधा लेके और कहते मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, मैं वर दूंगा। प्रभु कहे आमी भजो, आमी देगा वर। प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु जो सब नवदी की जो कन्या है इसको कहते हैं आप मेरा भजन करो, मैं आपको वर दूंगा। दुर्गा दासी मोर कहते दुर्गा तो मेरे दासी, दुर्गा जी दासी मोर, महेश किंकर जो आप जिसकी पूजा करते हैं वो तो मेरा किंकर है, दुर्गा मेरी दासी है। लेकिन आज लोग वो समझते दुर्गा मतलब सर्वश्रेष्ठ, वर देने में वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ विजय ध्वज ने जो आचार्य टीका लिखे है तो दुर्गा है वो वर देने में समर्थ है, जैसे कंस, कंस दुर्गा भक्त थे और दुर्गा की उपासना किया था और वर भी प्राप्त किए थे कि ऐसा मुझे वर दीजिए जो सब असुर है मेरे वश हो जाए। और आपने सब देखे कंस ने दुर्गा की उपासना किया और सब असुर इसके सानिध्य में इसके अंदर में आ गए, देते हैं। और आपने देखे कि देवी देवता का भजन करते हैं तो क्या फल मिलता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी की क्या मिला, बहुत वर मिल दिया, सुखा से न मरू गिला से न मरू, न सुबह न शाम न दिन न रात, ऐसा ही मांग लिया, समझ लो अमर अमरत्व हो जाए ऐसा वरदान मांग लिया। लेकिन तो भी भगवान थम में आके मार दिए। रावण ने भी शिव जी की उपासना किया, असुर है, एक एक सिर देने लगे, भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए, लंका चाहिए। लेकिन मिला क्या इसको, लेकिन देखो भगवान के शुद्ध भक्त जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज ने भगवान की तपस्या की और मांगा, अरे मांगा नहीं भगवान ने दिए, क्या चाहिए बोलो। सुने हुए 37,000 साल तक ध्रुव महाराज ने इस भूमंडल में राज्य किया था और विभीषण कुछ तपस्या जैसे रावण की जैसे तपस्या नहीं की, केवल भगवान के शरण में गए और भगवान के शरण में जाके प्राप्त के लिए पूरा लंका, ऐसा ही कुछ तपस्या नहीं करना पड़ा ऐसे प्राप्त के लिए। तो वैष्णव होते हैं, वैष्णव मांगते तो भगवान के, भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमारे जो भाग्य होएंगे तो भगवान देंगे, लेकिन नहीं देंगे। और गुजराती में एक भक्त है जो यहाँ पर कहते थे, प्रभु गुजराती में बता रहे थे कि हमारे एक माता है दादी, इसका पुत्र नहीं थे तो इसने खोडियार माता की उपासना की, माता का नाम है देवी का गुजरात में, तो उपासना किया और 2 साल के बाद पुत्र हुआ इसको, तो बाद में इसका नाम खोडियार माँ के नाम से रखा खोड़ा भाई। होता है गुजरात में ऐसा नाम है, तो बता रहे थे बाद में वो बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गया, इसको भी बच्चा हो गया, तो इसकी माता बूढ़ी हो गई, तो बहुत तपस्या किया था देवी को, सीधा कुछ फल इत्यादि पूजा किया था, लेकिन बड़ा बच्चा हुआ बाद में माता जी को रखा नहीं, बोले अभी मैं नहीं रखूंगा, तो बाद में वो माता बोल रही थी 1 रुपया है ये भी नकली है हमारे पास, माता जी ने 1 रुपया दिया वो भी नकली दिया, ओरिजिनल नहीं दिया, और दुखी होता है। और आप देखते हैं अभी देखो कितना वृद्धावस्था मतलब वृद्धाश्रम खुलते हैं, वो सब देवी के उपासना है और पुत्र मांगे हैं, पुत्र भी हो गए भी और माता पिता को रखते भी नहीं है, और कहां पर वृद्धावस्था में सरते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन भगवान के पास मांग लिया पुत्र दीजिए, और शायद भगवान ने नहीं दिया समझ लो, तो भी भक्त खुशी में ठीक है भगवान की इच्छा है, शायद ऐसा पुत्र दे दिया जो दुखी करने वाला है पीछे, इससे अच्छा पुत्र ही नहीं है, ऐसे ही भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो भक्त जब भी कभी कभी जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर ऐसा देवालय होता है, शिव जी का मंदिर होता है देवी का, ऐसा नहीं जाना चाहिए या इसका अहेलना करना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप जाइए, क्योंकि हमारे मनुष्य कई गुणे बड़े हैं देवी देवता, प्रणाम करना चाहिए, मांगो कृष्ण भक्ति मांगो देंगे, वो तो भगवान के सेवक है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना श्लोक में, तो आप वर देने में समर्थ होंगे, वर देने में समर्थ है, कहते ना महाकाली तेरा वसन नजे खाली, जो भी मांगे दे देते, वसन खाली होते ही नहीं है, दे देते तुरंत मिल जाता है। लेकिन भक्त के लिए क्या मांगना चाहिए, पृथ्वी महाराज सिखाते हैं हमको, भगवान के जो अवतार है पृथ्वी महाराज, वो कहते हैं भक्त को क्या मांगना चाहिए, कहते हैं न कामे ना तदप्य हम कचित न यत युष्मन शरणा बुजाशव महत्मानंतस्य हृदया मुखसुतो विदस्व कर्ण युष्मेशमे वर। इसमें कहते हैं पृथु महाराज कहते हैं हे प्रभु आप मेरे पर प्रसन्न है तो मुझे विदस्व 10,000 कर्ण दीजिए, कान दीजिए, 10,000 कानों से मैं आपकी कथा सुनू, वो मांगते हैं। जैसे न धनम, अभी मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की बात कहा, अभी तो 2 कान दिए वो भी सही तरह नहीं सुन पाते हैं, वो भी बैठे है क्लास में आ जाते हैं तो भी बंद हो जाते हैं, होता है। लेकिन भक्त को ऐसा मांगना चाहिए, देवी के पास गए तो भी क्या ऐसा कान लीजिए कि मैं भगवान से कैसे की कथा सुनू, यहाँ तो पृथ्वी महाराज भगवान के पास मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि आपके उपासक तो भी होंगे, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर परपोट में कहते हैं जो वैष्णव होते हैं वो यहाँ पर मांगते हैं, जाते हैं देवी के मंदिर में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, यहाँ पर मंदिर आ गए तो कभी गए तो इसमें कोई दोष नहीं है, तो गए तो मांगे क्या, बस यही मांगे मान के भक्त महामंत्र में मति लगे, राम की भक्ति, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं राम का भजन करना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, रुक्ष्मणी द्वारकाधीश का भजन हो ऐसा मांगना चाहिए। लेकिन न जाने हमारा इस भौतिक शरीर भगवान का नाम क्या कुछ मांगते ही नहीं है, बस केवल भोग भोगना वही मांगते हैं। इन वैष्णव को यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के पास मांगना ऐसा कि हमारी मति भगवान में लगे, भगवान का गुणगान गाए। तो यहाँ पर जो माया शब्द है, जो माया है भगवान की जो शक्ति है वो भौतिक संसार में, तो माया से हमको ऊपर उठना है तो भगवान द्वारकाधीश अर्जुन को कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे प्रबदंते माया मेता तरंतिते। जो माया से परे होने का है तो क्या माया मेता तरंते मतलब मेरा शरण मामे प्रबंधनते मेरा शरण ग्रहण करो आप, जो भगवान गीता में कहे सर्वधर्मान छोड़कर आ जाओ मेरा शरण मामे कम केवल मेरा शरण में आ जाओ। तो माया मेता तरंतिते माया से तर जाएंगे पार हो जाएंगे। तो माया भक्त को नहीं चलाती कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भगवान के शरण में जाएंगे तब। भगवान ने गीता में कई जगह पर कहे है मेरा शरण में आ जाओ मां में कम प्रपद्य मुझे ही प्रणाम करो मेरी उपासना करो। देखो यहाँ पर भगवान कहते हैं तेरी उपासना सब करेंगे, लेकिन यहाँ पर गीता में भगवान क्या कहते हैं जिसका भजन जैसा करेंगे ऐसे आप इसके लोक के प्राप्त करेंगे। यान्ति देवता देवान पितृयाति पितृवता यान्ति भूताचि कहते यान्ति मज्जनोपि मम। भगवान कहते जो मेरे शरण में आते हैं वही मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। देवी का भी लोग तो है ही लेकिन जो भगवान के लोग है अर्थात भगवान के जो धाम है यहाँ पर बहुत आनंद है सुख है। जो यहाँ पर यहाँ हम दुख भोग रहे हैं विपरीत यहाँ से सुख है बस। तो भक्त को ये इच्छा रखना चाहिए जो यहाँ पर भगवान कहते हैं माया से जो तरने का है तो भगवान का शरण लेना चाहिए। कभी कहाँ भी ऐसे मंदिर में चले गए देवी देवता के तो मांगना चाहिए कि भगवान की माया से बचाइए हमारी मति कृष्ण के नाम में लगे, कृष्ण के शुद्ध भक्त है। आपको पता है देवी देवता है और इससे भी बड़े भक्त है, वैष्णव का स्थान ऊपर है। देखो देवता होना कभी कभी ईर्ष्या कर लेते हैं और द्वेषी है। आप बोले कैसे, देखो वाल्मीकि रामायण में भी लिखे हैं जब प्रभु श्री राम का राज अभिषेक होने वाले थे तब सब देवता कहां पर ब्रह्मा जी के पास गए और कहे हे ब्रह्मा जी कृपा कीजिए जो अयोध्या में राम को राज्य मिलने वाला है तो आप ऐसा कुछ कीजिए राम को वन मिले। ब्रह्मा जी बोले मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, आप जो विद्या मतलब जो विद्या की देवी सरस्वती है इसके पास जाइए। और यहां पर गए और कहे अयोध्या में किसी की बुद्धि भ्रष्ट कीजिए राम को दीजिए। देखो भगवान कितना कोमल है कितना दयालु है लेकिन देवताओं ईर्ष्या करते हैं और राम को वन में भेजते हैं। इसका क्या रीजन क्या था, रावण को मरने का इसका वो इच्छा थी, रावण मरे तो हम सुखी प्राप्त कर ले राम को वन मिले। ठीक कई जगह पर ऐसा है देवताओं इच्छा कर लेते हैं। तो वैष्णव को बहुत ये सब बड़ी बात समझना चाहिए तो किसका भजन करना चाहिए। टाइम तो हो गया है तो बस यही सार है आज के श्लोक में। जो नाम तो सब दिए हैं भगवान ने नाम दिए हैं, देखो देवी का नाम नामकरण करने वाले ही भगवान है तो इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके पास जाए इसमें कोई दोष नहीं कोई पाप नहीं है लेकिन बस यही मांगना चाहिए प्रभुपाद जी का परपट अनुसार हमारी मति कृष्ण महामंत्र में लगे तो वो मांगना चाहिए भगवान में मति लगे। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो नन्दकोटिवैष्णवबलिनी रघुनाथबलभद्रसुभद्रां याति गौरवप्रियनन्दिनी।